ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 17।
यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकलयोनि सुदह्यमानः शोकाग्निना सकलयोनि सुदह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्वियाहम् दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्वियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् भूमन् भ्रमादि वद मे तव दास्य योगम् यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकलयोनि सुदह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्वियाहम् भूमन् भ्रमादि वद मे तव दास्य योगम्
शब्दात् यस्मात् जिसके कारण प्रिय अच्छा लगने वाला अप्रिय न अच्छा लगने वाला वियोग विरह संयोग तथा मिलन के कारण जन्म जिसका जन्म शोक अग्निना शोक की अग्नि से सकल योनिषु किसी भी प्रकार के शरीर में दह्यमानः जलकर, दुखौषधम् दुखी जीवन के लिए उपचार, तत् वह अपि भी दुखम् कष्ट, अत धिया शरीर को आत्मा मानकर, अहम् मैं, भूमन् हे महान, भ्रमामि घूम रहा हूँ जन्म मरण के चक्र में, वदा कृपया उपदेश दें, मैं मुझको तब तुम्हारा दास्य योगम सेवा कार्य। अनुवाद एवं तत्व श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने के अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। अतएव मैं सोचता हूं कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है, कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के इच्छुक थे। अपने ऐश्वर्यशाली पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उनकी संपत्ति का उत्तराधिकार ग्रहण करना था, जो सारे विश्व में फैली थी। लेकिन वे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, चाहे वह धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र ही रहती हैं। अतएव कोई भी जीवन दशा पूर्ण रूपेण प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य अदूषित आनंद में जीवन भोगना चाहता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन श्रम करना होता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है, तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुखमय हैं। यदि कोई वास्तव में आनंद में सुखी जीवन चाहता है, तो उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीव के दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति की जाए, तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट तथा दुख है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ तिथि है, अक्षय तृतीया। तो हम अक्षय तृतीया की महिमा का भी थोड़ा वर्णन करेंगे, और इस श्रीमद् भागवतम श्लोक के ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, और इसके बाद अक्षय तृतीया की महिमा का गुणगान करेंगे। तो ऐसे तो श्लोक बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी व्याख्या प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य के अंदर किया है, लेकिन समय की कमी होने के कारण हम बहुत सार में प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में समझाना चाहते हैं, उचित तात्पर्य को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद हम अक्षय तृतीया की महत्ता को बताएंगे। तो नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, वध करने के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बहुत ही क्रोधित थे और इतना भयंकर क्रोध था, हम पीछे के क्लास से श्रवण करते आ रहे हैं कि वहां उपस्थित सभी लोग भगवान के इस उग्र रूप को देखकर भयभीत थे, सब लोग डरे हुए थे, कोई भगवान को शांत करने के लिए उनके पास नहीं जाना चाहता था। ब्रह्मा जी पीछे हट गए थे, लक्ष्मी जी पीछे हट गई थी, इंद्र चंद्र सूर्य वरुण सभी देवता लोग भी वहां उपस्थित थे, लेकिन आज तक सृष्टि में पहली बार भगवान को इतना क्रोधित और इतना विकराल रूप देखने को मिला है, कोई नहीं जाना चाहता था भगवान के पास भगवान को शांत करने के लिए। और अंत में ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं कि तुम्हारे कारण ही भगवान का एक भयानक रूप आया है, भगवान ने इतना उग्र रूप धारण किया है तुम्हारी वजह से, तो तुम ही आगे जाओ, तुमको देखकर हो सकता है भगवान शांत हो जाएं, और कोई औषधि यहां नहीं दिख रही और कोई भगवान को शांत नहीं कर सकता है। तो ब्रह्मा जी के आदेश से प्रहलाद महाराज आगे आते हैं और प्रहलाद महाराज को देख कर हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो जाता है और इसके बाद प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तभी हम जो प्रसंग सुन रहे हैं, इस अध्याय का नाम है प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। तो इसके बाद प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। बहुत सारी स्तुति सुन चुके हैं और उसमें स्तुतियों में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यहां सब लोग आपसे भयभीत हैं, लेकिन मुझे आपसे भय नहीं लग रहा है, मुझे आपके भयानक मुख से, आपके भयानक जिह्वा से, नहीं सूर्य के समान चमकीली आपकी आंखों से, भयानक आंखों से, नहीं टेढ़ी भवों से। जब क्रोधित होता है कोई तो उसका भव जो होता है वो तन जाता है क्रोध में, जैसे नरसिंह भगवान का हम देख सकते हैं आंख कितना भयानक लग रहा है सामने ही है। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे आपकी इन आंखों से भी डर नहीं लग रहा है, न ही मैं आपके तेज नुकीले दांतों से डर रहा हूं, इतना भयानक दांत है आपके, लोग देख के डर जा रहे हैं, मुझे उससे भी भय नहीं लग रहा है, न ही आंतों की माला से। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वक्ष स्थल फाड़ दिया, पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ने के बाद जो उसके अंदर अतड़ी होती है, जितना भी मटेरियल था सब निकाल के पूरा लपेट लिया था, पूरा ब्लड से सना हुआ था। हाँ, बोल रहे हैं न ही आंतों की माला से, कितना भयंकर लग रहा होगा सीन आप लोग कल्पना कर सकते हैं। हाँ, न ही रक्त रंजित गर्दन के बालों से, भगवान का ऊपर का जो शरीर था वो गर्दन से ऊपर का सिंह का शरीर था और सिंह के शरीर पे क्या होता है, गर्दन के ऊपर बाल होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं सिंह के, और वो जो बाल था नरसिंह भगवान का वो कैसा था, रक्त से रंजित था, पूरा खून से सना हुआ था, बड़े बड़े बाल लेकिन पूरा खून गिर रहा था, कितना भयानक लग रहा होगा, इसलिए कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे उन बालों से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से या बर्छे जैसे पहने कानों से, भगवान का जो कान था वो सॉफ्ट नहीं था, बहुत ही हार्ड, हाँ, और एकदम नुकीला कान था भगवान का। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे आपके कानों से भी डर नहीं लग रहा है, न ही मैं आपके भीतर सिंहनाद से, जो आप गर्जना कर रहे हैं, भगवान मार रहे थे और गरज रहे थे, सिंह दहाड़ता है तो भगवान नरसिंह देव का इतना भीषण दहाड़ था, इतना भीषण दहाड़ रहे थे, क्रोध में चिल्ला रहे थे, जिससे कि जंगल के बड़े बड़े हाथी भाग जाए, भगवान जो सिंह दहाड़े तो ऐसे, हाँ, कि हाथियों का झुंड जिस दहाड़ को सुन के भाग जाए, ऐसी आपकी दहाड़ है, कौन जाना चाहेगा आपके पास, लेकिन मुझे सिंहनाद जैसी आपकी दहाड़ों से भी डर नहीं लग रहा है, आप इतना दहाड़ रहे हैं मुझे उससे भी कोई डर नहीं लग रहा है, नहीं मैं आपके नाखूनों से भयभीत है। हाँ, नाखून कितने भयानक होंगे, भगवान का जो हिरण्यकश्यपु का शरीर था वो वक्षस्थल, हाँ, पहाड़ की तरह, पाषाण की तरह, पाषाण जो पत्थर की तरह मजबूत था, लेकिन नरसिंह भगवान ने क्या किया, उसको भी चीर दिया, तो कितना मजबूत होगा वो नाखून, कितना भयानक होगा वो नाखून। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे उस नाखून से भी भय नहीं लग रहा है। तो मानो नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज से पूछ सकते हैं, लेकिन ये संसार है, यहाँ तो सब लोग भयभीत रहते हैं, भय सर्वत्र व्याप्त है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई ना कोई भय से लोग भयभीत रहते हैं, तुमको किसी चीज से भय नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जो संसार का स्वरूप है यहाँ तो भय सर्वत्र व्याप्त है, तो कहीं ना तुम्हारा भय होगा। बोले हाँ, मैं भी भयभीत हूँ, मुझे आपके इन सब विकराल रूपों को देख के भय नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी भयभीत हूँ संसार में, किससे भय लग रहा है तुमको, तुमको किससे डर है, तुमको किससे भय है। तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे भय है इस संसार में किससे, संसार चक्र कदना गृहस्थाम प्रणीत, कि मैं इस संसार चक्र में पीछे जाने से डरता हूँ। जो आपका भयानक संसार है इस संसार चक्र में आने के बाद, और हमारी संसार चक्र में सब लोग आते हैं, दुख में संसार है, दुख से भरा हुआ है, हाँ, लेकिन मेरी दशा इसमें और भी गंभीर है। मेरी दशा कैसे है, जैसे मान लीजिए संसार को दावानल बोलते हैं, हाँ, संसार जंगल में आग लग जाए, जैसे कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगा हुआ है, हाँ, और उस आग से बचने के लिए कोई जंगली जीव पानी का आश्रय ले ले, नदी में चला जाए, और उसी समय क्या हो, वहां मगरमच्छ आ जाए, अभी क्या करेगा बेचारा, न बाहर निकल सकता है न अंदर रह सकता है, इतनी भयानक दशा है। हाँ, जल के अग्नि के ताप से बचाने के लिए जल में गया, लेकिन जल के अंदर मगरमच्छ है, तो कितना विषम परिस्थिति उस जीव के लिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमारी भी ऐसी विषम परिस्थिति है, एक तो आपका संसार चक्र, दुर्जय संसार चक्र, जिसको जीतना बहुत कठिन है, जिसमें से निकलना बहुत कठिन है, हाँ, और इसमें से निकलने का एकमात्र साधन आपके चरण कमलों का आश्रय, लेकिन उसमें से भी एक संसार चक्र का ऐसा स्वभाव, और उसमें भी एक असुर कुल के घर में जन्म, एक असुर के घर में जन्म दे दिया आपने, और ऐसा असुर जहाँ की आपका नाम लेना, आपकी भक्ति करना, आपके चरणों का वंदना करना एकदम मना ही, आपके नाम से भी वो नफरत करता है, तो अर्थात इस संसार से निकल ही नहीं सकता हूं मैं, हमारा पिता खुद इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है। तो एक तो संसार चक्र में पीछे जाने का भय, ऊपर से उस संसार में ऐसे घर के अंदर डाल देना जहां असुर राज हिरण्यकश्यपु का आतंक है, उसका साम्राज्य है, ठीक वैसी दशा जैसे जंगल में एक जीव जंगल में अग्नि में फंसा हुआ है और बचाने के लिए नदी के पास जाए और वहां उसको मगरमच्छ मिल जाए, दोनों जगह भयानक दशा है। इतनी विपरीत परिस्थिति में आपने मुझे रखा है, मुझे इससे डर लग रहा है कि मैं कैसे निकल पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे, कब वो क्षण होगा, कब ऐसा समय आएगा जब आप मुझे उन चरण कमलों के चरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। आप खुद मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इससे बहुत भयभीत हूं, भजन नहीं हो पा रहा है, आपकी भजन से दूर रखा जा रहा है, मुझे इस अवस्था से डर लग रहा है। और आगे के श्लोक में जो आज का श्लोक है, श्लोक बहुत सुंदर है, लेकिन मैं बस एक लिंक जोड़ के समझा देना चाहता हूं हल्का सा। और आगे जो आज का श्लोक है, यहां प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारी ही बात नहीं है कि मेरे लिए ऐसी अवस्था है कि मुझे भगवान से विमुख रखा जा रहा है, मुझे संसार चक्र से बाहर निकलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। वास्तव में दूसरा लाइन में है, श्लोक का जो दूसरा लाइन है वहां बोल रहे हैं शोकाग्निनाश सकल योनिषि दह्यमान, दूसरा लाइन है शोकाग्निनाश सकल योनिषि दह्यमान, सकल योनिषु, सकल योनिषि मतलब 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जितने भी जीव इस संसार में हैं सब लोग शोक की अग्नि में जल रहे हैं, शोकाग्निनाश शोक की अग्नि में दह्यमान जल रहे हैं। सिर्फ हमारी बात नहीं है कि मैं संसार चक्र में पीसा जा रहा हूँ, सब लोग संसार चक्र में पीसा जा रहे हैं, जितने भी जीव हैं संसार चक्र में पीसा जा रहे हैं। तो बोल रहे क्या शोक है, क्या दुख है उनका, कहाँ पीसे जा रहे हैं, क्या शोक है उनके जीवन में, अन्य प्रकार के जो जीव हैं, अन्य प्रकार की जीवनियां, उनके जीवन में क्या दुख है। तो बोल रहे हैं यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, सब लोग शोक की अग्नि में जल रहे हैं, क्या शोक है उनका, क्योंकि भौतिक जगत में हर जीव का कुछ न कुछ प्रिय वस्तु में आसक्ति होती है और अप्रिय वस्तु नहीं चाहिए, तो कुछ न कुछ प्रिय है कुछ न कुछ अप्रिय है, हर जीव की दशा है, कुछ चीजों लाइक करता है कुछ चीज लाइक नहीं करता है। लेकिन आपके इस संसार का ऐसा स्वभाव है, आपने संसार ऐसा बनाया है कि थोड़ा उल्टा होता है, क्या होता है, बोलते हैं प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म। प्राय इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि जहां हमारी प्रियता होती है, जो चीज हमको चाहिए होती है, जहां हमारा लगाव होता है, उससे क्या होता है, हमारा वियोग हो जाता है, जो हमको चाहिए उससे हमारा वियोग हो जाता है, और जो हमको नहीं चाहिए उससे हमारा संयोग हो जाता है। इस सबका जीवन में अनुभव है और इसी में हम जल रहे हैं, जो हमको नहीं चाहिए तथा प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, कुछ प्रिय चीजें हैं जो हमको चाहिए लेकिन उससे हमारा वियोग होता है, इस संसार में नहीं मिलता है, जो हमको चाहिए नहीं मिलता है, और अप्रिय संयोग जन्म, और जो अप्रिय है जो नहीं चाहिए उससे हमारा बराबर संयोग होते रहता है, वही हमारे जीवन में आते रहता है। और इस अवस्था को दूर करने के लिए हमको बहुत सारे गर्हित कर्म करने पड़ते हैं, और उस कर्मों को करने के कारण हम इसी समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। हाँ, जैसे एक मकड़ी के जाल में कोई जीव फंस जाए और निकलने का प्रयास करे, तो जितना वो निकलने का प्रयास करता है उतना जाल में उलझते जाता है, कर्मों की श्रृंखला बना लेता है, तो संसार में प्रत्येक योनी के जीवन के साथ ऐसा होता है, सब लोग संसार में फंसे हुए हैं और इस दुख से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना दुख से निकलने का प्रयास करते हैं उतना दुख में उलझते जाते हैं। और इसकी पूर्ति के लिए बता रहे दुख औषधम तथपि दुख मत दिया हम, कि बहुत सारे उपाय हैं। भौतिकतावादी लोग भी प्रयास कर रहे हैं संसार में कि हमको दुख से मुक्ति मिल जाए, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जीव सुखी हो जाए, और भौतिकतावादी लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जीव सुखी हो जाए। सब लोग यहाँ सुखी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख औषधम तथपि दुख मत दिया हम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भौतिकतावादी लोगों के पास ही बहुत सारे उपाय हैं दुख उपाय करने, दुख दूर करने के लिए। वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कैसे संसार को सुखी बनाया जाए, कैसे देश को सुखी बनाया जाए, लेकिन उनके पास जो औषधि है वो औषधि कैसी है, वो और रोग को बढ़ाने वाली है। जितना दवा निकाल रहे हैं वो जो दवा है एक और प्रकार के रोग को जन्म देने वाली है। सिर्फ दुख बढ़ रहा है, दुख घट नहीं रहा है। इन लोग का औषधि कैसा है, कैसा दवा दे रहे हैं, कैसा उपाय खोज रहे हैं। मान लो बहुत गर्मी का दिन चल रहा है, बहुत तपन चल रहा है, बहुत गर्मी सता रही है। मान लो कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और अचानक उसको एक नदी दिखे और भीषण गर्मी से लूस उसका शरीर संतप्त है, जल रहा है गर्मी से, और नदी देखते हुए क्या करे, वो दौड़ के नदी में छलांग लगा दे अपनी गर्मी, अपना शरीर का ताप हटाने के लिए, अपने शरीर का ताप मिटाने के लिए, और नदी में छलांग लगा दे दूर से कूद जाए। लेकिन उसको नदी के विषय में कुछ पता न हो, और समझो से जहां कूदते हैं और नदी छिछली होती है, नदी कितना गहरा है, क्या है, पत्थर है, बालू है, कुछ उनको पता नहीं है। वो कूद गया नदी में और नीचे नदी में पत्थर है, छिछला नदी है, गहरा नदी है, और कूद के कहां गिर जाए, पत्थर के ऊपर गिर जाए, तो क्या होगा, उसका सर फूट जाएगा, उसको घाटा हो जाएगा। तो वास्तव में उसने छलांग लगाया किसके लिए, अपने शरीर का ताप दूर करने के लिए, आनंद लेने के लिए, लेकिन कूद गया कहां, नदी में, जो नदी छछली थी, उसका सर फूट गया। हाँ, उसी प्रकार बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं हमको दुख से निकालने के लिए, जो उपाय हैं सब सर फोड़ने वाले हैं, वो शांति नहीं देने वाले हैं और दुख को बढ़ाने ही वाले हैं। चलो भारत विकासशील देश है, क्यों विकासशील देश है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, हम कृषि पे आश्रित हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, अभी हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगे, अभी हम नया नया कंपनी बैठाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। अभी किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, अभी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, अभी कंप्यूटर की पढ़ाई होगी, सब व्यवस्था ला दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब इसके बल पे हम समाज को सुखी बनाएंगे। हाँ ठीक है, आपने ला दिया ट्रांसपोर्ट की सुविधा, ला दिया हाईवे बना दिया, अच्छा अच्छा ट्रांसपोर्ट है, दो घंटे में हम पूना पहुंच सकते हैं, दो घंटे में हम सूरत पहुंच सकते हैं, अच्छी सब सुविधा आ गई। लेकिन उस हाईवे को बनाने के लिए क्या किया आपने, पूरे वन को उजाड़ दिया, जंगल को उजाड़ दिया, कितने वन काटे गए, हरे वृक्ष काटे गए। तो एक समाधान आपने दिया, एक दुख दूर किया कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, आयात निर्यात में बहुत मुश्किल होता है, चलो अच्छा रोड बना देते हैं। अच्छा रोड बनाने में क्या किया, सब जंगल उजड़ गए, थोड़ा समाधान दिया, लेकिन अभी उसका भुगतान हमको भुगतना पड़ रहा है, अभी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हाँ, दिल्ली में डेली हो रहा है कि सबसे ऑक्सीजन कमी होगी, कुछ दिन में ऐसा स्थिति आ जाएगा तो लोगों को ऑक्सीजन पहन के चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, हरे वृक्ष चले गए, नया संकट। हरे वृक्ष होते हैं तो बारिश होती है, अभी बारिश नहीं है, पूरा देश संकट में पड़ गया, औषधि निकाला लेकिन रोग बढ़ गया। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई आ गई, कंप्यूटर लैपटॉप की पढ़ाई आ गई, डिप्लोमा की पढ़ाई आ गई, डिग्री की पढ़ाई आ गई। हाँ ठीक है, सब सुविधा आगे बढ़ गए, सब लोग आ गए, लेकिन उससे क्या हुआ, अभी अभी कोई गाय की सेवा नहीं करना चाहता है, कोई गांव में रहना नहीं चाहता है, सब युवा वर्ग बाहर के सिटी में आ गए, सब लोग पढ़ लिए, पहले लोग पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंस नहीं, 10-12 तक पढ़ लिया, फिर खेती गृहस्थी करके जिंदगी बिता देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सादा जीवन उच्च विचार लोग जी रहे थे। लेकिन अभी सब लोग पढ़ लिख के आ गए, सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब लोगों के पास डिग्री है, सब लोग मेहनत कर लिए, सबके पास डिप्लोमा डिग्री हो गई, अभी लोगों सरकार पर नौकरी नहीं है। अभी युवा वर्ग क्या करेगा, या तो नशा का सहारा लेगा, या तो नया नया एजेंडा कुछ अपनाएंगे, कुछ करेंगे। तो एक समस्या है, एक समस्या का निदान कर रहे हैं लेकिन दूसरा समस्या खड़ा हो जा रहा है। यही भाव यहाँ का, दुख औषधम तथपि दुख मत दिया हम, कि बहुत सारा औषधि भौतिकतावादी लोग भी निकाल रहे हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं कैसे सुखमय जीवन प्रदान किया जाए, लेकिन वो जितना औषधि निकाल रहे हैं एक दुख से ग्रसित है, उनका औषधि कोई कारगर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक ही मात्र औषधि है, एक ही मात्र दवा है जिसे संसार को सुखमय और शांतिमय जीवन दिया जा सकता है, और क्या है वो, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, वो है संकीर्तन आंदोलन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव ही केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति न था। सिर्फ हरि नाम का आश्रय लेके ही संसार में कुछ सुखमय और शांतिमय जीवन की कल्पना की जा सकती है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत क्लियर तात्पर्य में लिखते हैं कि यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीवन के दुख को दूर करने के लिए यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति कर ली जाए तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा, जो कृष्ण भावना पर आंदोलन कर रहा है, जो लोगों की नई दिशा दिखा रहा है, नई राह दिखा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज भले ही लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को माने चाहे न माने, इस्कान को माने चाहे न माने, लेकिन आने वाले समय में इस्कान को लोग याद करेंगे कि वास्तव में संसार को उस समय इस आंदोलन ने बचाया है जब चारों बगर अराजकता थी, जब कोई राह नहीं था, हर जगह लोग भ्रमित करने में लगे हुए थे, सब लोग हमको भ्रम का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उस समय में उस विपरीत स्थिति में इस्कॉन ने लोगों को एक नई दिशा दी है, एक नया जीवन दिया है। एक समय लोग याद करेंगे कि हमने समाज को क्या दिया है, भले आज इसका वैल्यू समझें चाहे नहीं समझें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके अंतर्गत आके, यही एक संसार है, यही एक ऐसा घर है जिसके अंदर आके लोग थोड़ा सुखमय और शांतिमय जीवन की आशा कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई भी आप भौतिक उपाय कर लो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो संक्षेप में इस श्लोक का आशय इतना ही हम कहना चाहेंगे, और जो प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं कि मनुष्य को भौतिक दशाओं में परिवर्तित करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र कष्ट और दुख व्याप्त हैं, आपका कोई भी औषधि काम नहीं आने वाला है, कोई भी भौतिक प्रयास काम नहीं आने वाला है। हाँ, एक ही प्रयास है वो आध्यात्मिक, और आध्यात्मिकता में भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो कि बहुत ही प्रामाणिक संप्रदाय है, जिसका सौदा चैतन्य महाप्रभु खुद इस युग में आए, प्रकट हुए और उन्होंने औषधि दिया, एनएची औषधि माया नासी बार लागी। हाँ, ये तुम लोगों के लिए मैं औषधि लेकर आया हूं, तुम लोगों के लिए दवा लेकर आया हूं, मांग के ले लो। हाँ, मांग के लो, हरि नाम मांग के लो, क्योंकि यही एक औषधि है जिससे तुम्हारा संताप कम हो सकता है, जिससे तुम्हारा शोक कम हो सकता है, जिससे तुम्हारा दुख कम हो सकता है, सिर्फ यही एक औषधि है, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। तो आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया जो कि बहुत ही शुभ तिथि है। अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, जिसका कभी क्षय न हो, नाश न हो, जो सदैव बढ़ता रहे। क्षय मतलब नाश, अक्षय मतलब जिसका कभी नाश न हो, इसलिए इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं। और इसलिए आज के दिन दोनों दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक लोग भी इसको मानते हैं आज के दिन को, और भौतिकतावादी लोग भी मानते हैं, दोनों लोग इस तिथि को आज मानते हैं, दोनों लोग इसकी महत्ता को जानते हैं। तो इसलिए आज के दिन यदि कोई भी शुभ काम शुरुआत होता है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, उसका निश्चित एक पूर्ण फल मिलता है, जो कार्य की सिद्धि है वो मिल जाती है, उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि अक्षय है, आज के दिन किया गया कार्य जरूर कुछ न कुछ आपके जीवन में शुभ लेकर आएगा। इसलिए प्राय सभी लोग आज कुछ न कुछ पवित्र कर्म करते हैं, सांसारिक लोग दान धर्म और बहुत तरह के अनुष्ठान करते हैं, बहुत लोग आज नया घर लेते हैं, नया काम चालू करते हैं, नया कंपनी बैठाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत लोग आज तीर्थ यात्रा करते हैं, अनेक अनेक धर्मों का आयोजन करते हैं घर गृहस्थी में। तो इस प्रकार ऐसी एक धारणा है, और पद्म पुराण में ऐसा वर्णन भी है कि आज के दिन जो काम किया जाता है, कोई भी शुभ काम किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है, अक्षय तृतीया, उसका कभी नाश नहीं होता। अक्षय मतलब जिसका कभी नाश न हो, वो है अक्षय तृतीया। तो इस संदर्भ में ऐसे वृंदावन में भी आज की तिथि का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है आज के दिन में। ऐसा कहा जाता है कि यदि आज के दिन आप वृंदावन जाना चाहते हैं, तो यदि वहां जाना है तो आपको अपना पहले कोई न कोई गाड़ी बुक करके रखना चाहिए, अपना साधन कुछ रख लेना चाहिए, नहीं तो आपको पैदल घूमना पड़ेगा, आप ज्यादा घूम नहीं सकते। यदि पैदल चलने की क्षमता तो आप चलिए, क्योंकि गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा आपको। तो प्रश्न उठेगा क्यों नहीं मिलेगा, कहां चली जाएंगे सब गाड़ियां। तो बोलते हैं कि आज वृंदावन में बहुत सारी शादियां होती हैं, बहुत शादियां होती हैं आज, और वृंदावन में आप जाएंगे ज्यादातर लोग देहात के क्षेत्र के लोग हैं, तो जितना भी ऑटो रिक्शा ट्रैक्टर ट्राली जो भी गाड़ी रहता है सब बुकिंग रहता है शादी के लिए, सब महीना भर पहले से बुक हो जाता है आज के लिए, सब लोग शादी करने के लिए जाते हैं। और ज्यादातर जितने भी पवित्र कर्म किए जाते हैं आज के दिन वृंदावन में, ऐसे तो आप कहीं भी जाएंगे तो आज चंदन यात्रा है तो भगवान का हर जगह बहुत अच्छा अच्छा चंदन श्रृंगार किया जाता है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं आज के दिन। लेकिन आज के दिन में वृंदावन में पावन सरोवर पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं पावन सरोवर पे। तो पावन सरोवर पे इतने ज्यादा फेस्टिवल क्यों होते हैं, क्यों महात्म्य पावन सरोवर का, लोग क्यों वहां एकत्रित होते हैं, तो उसके विषय में कथा है जो मैंने इस ग्रेस दीन बंधु प्रभु के लेक्चर से सुना। तो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ कि नंदलाला, नंद बाबा जी ने जब नंद ग्राम बसाया तो पहले जब कोई भी ग्राम वराम बनता था, नया गांव बनता था, तो उस समय गांव के जो मुखिया लोग होते थे गांव में एक तालाब भी खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे पशुओं के लिए और लोग स्नान भी करते थे, हर गांव पर आज तालाब होते थे। इस प्रकार जब नंद बाबा ने नंद ग्राम बसाया तो वहां एक तालाब खुदवाया, बहुत बड़ा तालाब था वो, और उस तालाब में लोग स्नान करने जाया करते थे, स्नान किया करते थे। कभी कभी बहुत बड़ा तालाब था तो एक साइड में नंद बाबा अपने घर के साथ स्नान करते थे और विश्वभानु बाबा भी बरसाने से आते थे उस तालाब में नहाने के लिए। कभी कभी ऐसा संजोग बनता था नहाने के लिए आते थे और एक साइड में वो नहाते थे, एक साइड में वो नहाते थे, विश्वभानु जी और नंद बाबा जी, इधर कृष्ण भगवान उधर राधा रानी। और नहाते समय जब डुबकी लगाते थे तो भगवान के पास अचिंत शक्ति है, चौसर कला में निपुण है, तो भगवान नीचे से क्या करते, तैराकी में बहुत सारी विद्या होती है, ऊपर से तैरते हैं, नीचे से तैरते हैं, अंदर से तैरते हैं, तो भगवान क्या करते, डुबकी लगाते थे और तैरने के बाद कहां चले जाते थे, बीच में, और उधर से राधा रानी डुबकी लगाती थी, वो भी तैर के बीच में आ जाती थी, फिर बीच में दोनों लोग मिलते थे, मिलकर फिर साइड में चले जाते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था। तो इस प्रकार अंतरंग पास टाइम भगवान करते थे पानी के अंदर राधा रानी के साथ में, और नंद सरोवर में ऐसी घटना घटती थी। इसके बाद एक दिन आए भगवान कृष्ण, नंदलाला नहाकर आए और देखे कि भैया घर में खाना बना रही है, लेकिन नॉर्मल खाना नहीं बना रही है, जो जनरली दाल चावल रोटी सब्जी बनता था वैसा खाना नहीं बना रही है, मैया सब फ्राइड आइटम बना रही है, फ्राइड राइस, फ्राइड दाल, फ्राइड सब्जी, पनीर, सब फ्राइड आइटम बना रही है, सूखा सूखा कुछ ड्राई ड्राई आइटम बना रही है, बहुत सारा व्यंजन बना रही है। तो लाला गए मैया के पास, बोले मैया आज कुछ विशेष पर्व है क्या, विशेष त्यौहार है क्या, कुछ तो फंक्शन दिखाई नहीं दे पा रहा है, आज इतना ज्यादा भोजन क्यों बना रही हो, इतना अच्छा अच्छा प्रसाद क्यों बना रही हो। तो मैया ने बोला नहीं कोई फेस्टिवल नहीं है, आपके बाबा कल जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। तो मैया कहाँ जा रहे हैं, बाबा कल कहाँ जा रहे हैं, तो प्रयाग जा रहे हैं। मैया प्रयाग कहाँ है, तो मैया खाना बनाने में लगी थी, और बोले कि खाना बनाना है तो हमसे सब कुछ लोगे क्या, जाओ नंद बाबा से पूछो प्रयाग कहाँ है। तो लाला वहां से आए नंद बाबा के पास, फिर बोले बाबा प्रयाग कहाँ है, तो नंद बाबा ने कहा कि जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियों का संगम होता है और बहुत पवित्र स्थान है इस धराधाम पे, इस पृथ्वी लोक पे, सब लोग वहां जाते हैं स्नान करने के लिए, वहां स्नान करने से समस्त वासनाएं खत्म हो जाती हैं, हृदय पूरा निर्मल हो जाता है, मन पूरा शुद्ध हो जाता है, जीवन में एक ना एक बार वहां जाकर स्नान कर लेना चाहिए, तो मैं भी जा रहा हूँ प्रयाग स्नान करने के लिए। अच्छा तो प्रयाग कितना दूरी पे है, इतना दूरी पे, मैं भी चलूं क्या, नहीं, बोले अभी तुम्हारा तीर्थ यात्रा का समय नहीं आया है, अभी तुम घर में रहो, मम्मी का देखरेख करो, खाओ पियो, और जब समय आएगा तब जाने का, अभी आप हमारे साथ मत चलो। अच्छा ठीक है नंद बाबा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्या विनती है? बाबा आज मत जाओ, आज यात्रा करने मत जाओ। बाबा बोले क्यों? क्योंकि आज अच्छा दिन नहीं है। हाँ, गांव में ऐसी मानता होती है कि जब हम यात्रा करते हैं तो हम दिन देखते हैं, कौन सा दिन में पूर्व में जाना चाहिए, कौन से दिन में पश्चिम में जाना चाहिए, कब बाहर निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ऐसे नंद बाबा को मिलाए और बोले कि आज का दिन अच्छा नहीं है इस दिशा में जाने के लिए, आप कल जाओ। तो नंद बाबा लाला को बहुत प्रेम करते थे तो उनकी बात मान लिए, ठीक है चलो मैं आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। तैयारी सब हो गई थी सुबह सुबह, फिर इसके बाद क्योंकि नंद बाबा डेली नहाने के लिए जाते थे नंद सरोवर में, तो नंद बाबा सुबह उठे और नहाने के लिए गए, और अकेले नहाने के लिए गए, जल्दी जाकर जल्दी आना था, पैक करके फिर निकलना था यात्रा पे, तो सुबह सुबह अकेले चले गए नहाने के लिए। जब वहां नहाने के लिए गए तो वहां देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर देदीप्यमान व्यक्ति है, जो राजा का वस्त्र पहना हुआ है, उसके वस्त्रों में रत्न जड़ित आभूषण लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर चमकता हुआ चेहरा है, बहुत ही तेज है चेहरे पे, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो नंद सरोवर के बगल में भूमि में लौट रहा है, हंस रहा है, चिल्ला रहा है, हा 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 करके पागल की तरह भूमि में लौट रहा है। इसके बाद नंद बाबा देख रहे हैं, अरे कौन व्यक्ति है, इसके बाद हंसते हुए उठा और फिर छलांग लगा दिया, कहां, नंद सरोवर में। दो मिनट नहाया, फिर बाहर निकला, फिर हंसने लगा और हंस के फिर भूमि में लौट गया। इसके बाद फिर लौटा, पूरा मट्टी उट्टी लग गया, फिर कूद गया नंद सरोवर में, फिर बाहर आ, नंद बाबा को बहुत आश्चर्य हो गया कि क्या कर रहा है, कौन है, देखने में सज्जन व्यक्ति लग रहा है, पागल तो लग नहीं रहा है। नंद बाबा गए, हाथ जोड़े, बोले महाशय आप देखने में तो कोई विक्षिप्त नहीं लग रहे हैं, आप तो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति लग रहे हैं, आपके शरीर का तेज भी आ रहा है, लेकिन आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है आपका, तो आपका परिचय क्या है, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ा नंद बाबा के सामने और बोले कि मैं प्रयाग हूं। नंद बाबा ने बोला प्रयाग, इस नाम का व्यक्ति तो आज तक मैंने सुना नहीं, हमारे क्षेत्र में प्रयाग नाम कोई व्यक्ति है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं। आपका फुल एड्रेस क्या है, कहां से आए हो, कहां घर है आपका, क्योंकि प्रयाग नाम का व्यक्ति कोई देखा नहीं ऐसे व्यक्ति को। तो प्रयाग ने कहा कि मैं इलाहाबाद वाला प्रयाग तीर्थ हूं, प्रयाग तीर्थ राजा, इलाहाबाद नहीं बोले होंगे क्योंकि इलाहाबाद नहीं था, तो पूरा फुल एड्रेस बताया उन्होंने कि मैं कहां से आया हूं, मैं प्रयाग तीर्थ हूं, प्रयागराज तीर्थ हूं मैं, प्रयागराज तीर्थ है। फिर और हम्बल बन गए नंद महाराज, फिर आप यहां ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। बोले क्या करें नंद बाबा, हमारे यहां बराबर मेला लगते रहता है, सावन का मेला है तो माघ का मेला है तो पूर्णिमा का मेला है तो अमावस्या का मेला है तो कुंभ का मेला है, सालों भर मेला चलते रहता है और लाखों लाखों लोग आके डेली डुबकी लगाते रहते हैं, नहाते रहते हैं और इतनी भारी मात्रा में नहाते हैं। मैं तो ठीक है, मैं वहां पे हूँ, सब नहा रहे हैं, मैं सबको शुद्ध कर रहा हूँ, पवित्र कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ मेला लगता है कि मेरा जो पवित्रता का पावर है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साल में आज के दिन यहाँ आता हूँ और यहाँ ब्रज की मिट्टी में लेटता हूँ और जितने भी सरोवर हैं सब में स्नान करता हूँ और इसके बाद मुझे पुनः दोबारा शक्ति मिल जाती है, फिर मैं साल भर जाकर लुटाता हूँ क्योंकि मेरा शक्ति पूरा खत्म हो जाता है। तो मैं एक दिन के लिए यहाँ आता हूँ, आज का दिन है, आज का दिन कौन सा है, वो अक्षय तृतीया था, वो दिन अक्षय तृतीया का था। तो आज के दिन मैं यहाँ आता हूँ, भूमि में लेटता हूँ, ब्रज की भूमि में लेटता हूँ, ब्रज की भूमि का मिट्टी का महात्म्य है, मैं यहाँ लेटता हूँ और सरोवरों में स्नान करता हूँ, इसके बाद मैं पूरा ताकत बन जाता है, फिर मैं वापस चला जाता हूँ, यही मैं करता हूँ, इससे मुझे शक्ति मिलती है। अच्छा, इसके बाद नंद बाबा देख रहे हैं कि एक साइड में चल रहा है, दूसरे साइड में बहुत सारी देवियां हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है वहां का, छह सात देवियां हैं जो स्नान कर रही हैं, सुंदर सा रेशमी वस्त्र, रेशमी साड़ी पहना हुआ है, बहुत सुंदर श्रृंगार है, उनके शरीर से भी ऐसी तेज निकल रही है, ऐसे ही प्रभा है, ऐसे ही आभा उनके शरीर से निकल रही है। तो नंद बाबा हाथ जोड़ते हुए उस पार गए और वहां जाके देवियों से प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं, आप लोग कौन हैं, आप लोग के आने का प्रयोजन क्या है, आप लोग क्यों स्नान कर रही हैं, आप लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जैसे इधर प्रयागराज कर रहे थे ऐसे उधर देवियां कर रही हैं, तो आप लोग अपना परिचय बताओ। तो उन लोगों ने अपना परिचय बताना शुरू किया कि मैं गंगा हूँ, हाँ मैं सरस्वती हूँ, मैं नर्मदा हूँ, मैं कावेरी हूँ। तो आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम उन्होंने सुनाया था वही प्रॉब्लम इन लोगों ने भी सुनाया कि हमारे यहाँ भी ऐसे चलते रहता है फेस्टिवल, तो हम लोग भी साल में एक दिन आती हैं और अपने आप को पवित्र करके शक्ति इकट्ठा करके फिर वापस चली जाती हैं। हाँ, फिर वापस चली जाती हैं। तो इसके बाद नंद बाबा सबको दंडवत प्रणाम करते हैं और स्नान नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। इधर लाला घर में बैठे थे, यशोदा माता सब उनका टिफिन पैक कर रही थी, बना रही थी, सुबह ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम को ये खाना है, कल के लिए ये चलेगा, जैसे हम प्रसाद का लिस्ट बनाते हैं क्या बिगड़ेगा क्या चलेगा, तो यशोदा माता सब टिफिन तैयार कर रही थी नंद बाबा के लिए। नंद बाबा आए घर में और बैठ गए जाके, लाला जी आए, बोले पापा सब कुछ रेडी हो गया, बाबा अभी आपका टिफिन मेरे मम्मी रेडी कर दिया है, आप जा रहे हैं लेकिन मेरा आपसे एक विनती है। क्या विनती? आप जल्दी आ जाना, बहुत ज्यादा मत रुकना। बोले क्यों? ओ क्यों नहीं पूछो, अपने से बोलते जा रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाना। तो मानो माँ बाबा जी पूछेंगे क्यों जल्दी आ जाना है, तो बोलते हैं कि देखिए यशोदा मैया के पास कंप्लेन आता रहता है और ये मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, कितनी बार हमारे पर गुस्सा होती हैं, मारने को भी उड़ती हैं, लेकिन आप रहते हैं तो उनका कुछ हिम्मत नहीं पड़ता है, वो आपसे डरती हैं, इसलिए मुझे कुछ बोलती नहीं है। अभी आप नहीं रहेंगे तो मेरी जो स्वतंत्रता है थोड़ा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे मजा नहीं आएगा। हाँ, तो इसलिए आप जल्दी आ जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा ना भैया, कभी भी हमारे ऊपर धावा बोल सकती है, कभी हमारा पिटाई हो सकता है, आपके कारण मैं बचा हुआ हूँ, आप जा रहे हैं इससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नंद बाबा बोलते हैं ठीक है ठीक है, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, फिर नंद बाबा अचानक बोले भैया मैं जा ही नहीं रहा हूँ, जल्दी आने का सवाल नहीं, मैं जा ही नहीं रहा हूँ। अरे बाबा क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जाना है? नहीं नहीं मुझे जाना ही नहीं है तीर्थ यात्रा करने। तो नंदा बोला क्यों नहीं जाना है, क्या हो गया, अभी तो आप कल बोल रहे थे जाने के लिए, आज प्रसाद भी बन गया, अभी आपको क्यों नहीं जाना है? बोलते नहीं जाना है। बोले क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जहां जाना वो सब लोग को मैं देख कर आया, सब लोग इधर आते हैं, जिस कुंड में मैं डेली नहाता हूं उस कुंड में लाके वो लोग नहा रहे हैं, अपने आप को पवित्र करने के लिए, तीर्थ शुद्ध करने के लिए, और मैं तो डेली उसी कुंड में नहाता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं तो प्रयाग को भी देखकर आया, गंगा को भी देखकर आया, सरस्वती को भी देखकर आया, नर्मदा को भी देखकर आया, सबको प्रणाम करके आया, सब लोग अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, तो मैं तो यही नहा लूंगा, मेरा हो गया तीर्थ यात्रा, मुझे क्या जाने की जरूरत है। तो भगवान कृष्ण कहा, बाबा समझ में आ गया, मन में बोला उन्होंने कि बाबा आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों आपको नहीं जाने देना चाहता था। अर्थात भगवान जहां है वहां सब कुछ है, सब तीर्थ भगवान में ही निवास करते हैं। हाँ, उसी संदर्भ में छोटा सा चुटकुला है कि एक बार कितना प्रामाणिक है पता नहीं, कि एक बार प्रयागराज तीर्थ, उनको सभी तीर्थों के राजा हैं, प्रयागराज तीर्थ उनका नाम है, तो सभी तीर्थ उनके पास जाते हैं साल में एक बार कर देने के लिए, उनसे मिलने के लिए या मिलने के लिए, कुछ तीर्थों के राजा सबसे बड़े राजा हैं, वो तीर्थ के सबसे बड़े राजा हैं, तो सब लोग जाते थे और जाके किसी ने उनका कान भर दिया, किसका, प्रयागराज तीर्थ का, कि आपके पास सभी तीर्थ आते हैं, हम सब लोग आते हैं, आपकी जी हुजूरी करते हैं, आपका जो कर रहता है वो भरते हैं, और हम लोग मीटिंग करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन ये वृंदावन कभी नहीं आता है, ये वृंदावन एक तीर्थ है, ये कभी नहीं आता है मीटिंग में, कभी कुछ बात करने के लिए नहीं आते हैं। तो प्रयागराज ने सोचा, लेकिन फिर भी वो भगवान की महत्ता समझते हैं, तो कुछ बोला नहीं वृंदावन के विषय में, सीधे भगवान के पास कंप्लेन लेके गए। भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए और बोले कि देखिए, आप ही नियम बनाया है और आप ही ने मुझे उस पद पे बैठाया है, प्रयागराज तीर्थ मुझे नाम दिया है, और कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है, कैसे क्या करना है, अभी कुंभ आ रही, उसकी तैयारी करना है, कुछ ना कुछ मीटिंग वीटिंग चलते रहता है, तो आपको लेकिन वृंदावन कभी आता नहीं है। तो भगवान ने बोला, प्रयागराज तीर्थ मैंने आपको राजा बनाया बात सही है, लेकिन मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा आपको नहीं बनाया है। अर्थात वृंदावन अलग ही धाम है, वृंदावन का महात्मा अलग ही है, ये भगवान साबित करना चाहते हैं, और यहाँ सभी तीर्थों ने भी आकर साबित कर दिया है कि वृंदावन धाम ही है, जहाँ सब लोग अपने आप को जाकर पवित्र करते हैं। तो इस प्रकार वो दिन अक्षय तृतीया का था जिस दिन ये लीला घटित हुई। समस्त तीर्थ जाके उस दिन स्नान करते हैं नंद सरोवर में, और उसी दिन नंद बाबा ने क्या किया, उस नंद सरोवर का नाम हटा दिया और उस नंद के स्थान पे पावन रख दिया, पावन सरोवर, पवित्र करने वाला सरोवर है, क्योंकि सभी पवित्र करने वाले तीर्थ इसमें आके नहाते हैं, तो नंद सरोवर खत्म हो गया और उसका नाम हो गया पावन सरोवर। इसलिए आज पावन सरोवर बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, क्योंकि आज के दिन सभी तीर्थ वहां एकत्रित होते हैं अक्षय तृतीया के दिन, इसलिए सब फेस्टिवल वृंदावन के ज्यादा से ज्यादा आज पावन सरोवर के आजू बाजू में केंद्रित होते हैं, वहां किए जाते हैं। इसके अलावा आज चंदन यात्रा है, आज के दिन ही गोपीनाथ जी को चंदन का शुभारंभ किया था माधवेंद्रपुरी ने, तो उसके विषय में भी थोड़ा हम चैतन्य चैतामृत से पढ़ेंगे कि किस प्रकार उस लीला का प्रारंभ होता है, भगवान की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। समय कम है लेकिन फिर भी थोड़ा मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन आए और वृंदावन आकर और गोवर्धन जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, और गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बाद और संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, गोविंद कुंड में स्नान किया और गोविंद कुंड में स्नान करने के बाद एक वृक्ष किनारे बैठ जाते हैं क्योंकि थक गए थे, और उसी समय वो विश्राम कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बहुत ही सुंदर बालक हाथ में एक लोटा दूध लेकर आता है और बोलता है कि आप दूध पी लीजिए, और आप परिक्रमा करते हैं तो आपको भिक्षाटन करके मांग के खा लेना चाहिए ना, आप ऐसा तपस्या क्यों करते हैं। तो इस बालक की बोली इतनी सुंदर थी, इतनी मधुर थी कि ये सुन के और उसके उसके माधुर्य को देख के, उसके शरीर का तेज देख के माधवेंद्रपुरी को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलता है, ऐसा लगता है कि उनका समस्त दुख, समस्त जो कष्ट था, जो समस्त थकावट था, वो पूरा दूर हो गया सिर्फ उस शरीर को देख के, उस बालक को देख के। और माधवेंद्रपुरी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो बालक बोलता है कि मैं इधर ही रहता हूँ वृंदावन में, इधर घूमते रहता हूँ, और ऐसा इस ब्रज का नियम है कि यहाँ जो कोई भी आता है यहाँ कोई भूखो नहीं रहता, कोई भूखा नहीं सो सकता है, या तो भिक्षाटन करके खा लेता है, और भिक्षाटन में उसको जो चाहिए दूध मिलता है, फल चाहिए फल मिलता है, रोटी चाहिए रोटी मिलता है, जो उसको चाहिए उसके अनुसार उसको भोजन दिया जाता है, और कोई ऐसा याचक आता है भजन करने के लिए और मांग के कुछ नहीं खाता है, हाँ अयाचक वृत्ति अपना लिया है, मिलेगा तो मिलेगा, खाएंगे तो खाएंगे, भगवान देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, तो ऐसे लोगों की निगरानी के लिए गांव के मुखिया ने हमको नियुक्त किया है, मेरा काम है देखना कि किसको खाना मिला है और नहीं मिला है, और जिसको नहीं मिला उसको लाके खाना देना, वो मेरा काम है, मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मानो माधव मुरी पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि मुझे खाना नहीं मिला और मैं बैठा हूं? तो बोले कि अभी भी कुछ स्त्रियां गई छाछ और दही बेचते हुए जा रही थी, और उन्होंने देखा कि आप बैठ के यहां भजन कर रहे हैं, और कब से भजन कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा करके आए हैं, और आप कुछ खाने आपके पास कुछ साधन भी नहीं है, आप ऐसे ही एकदम बैरागी तरह बैठे हुए हैं, तो मुझे पता चला कि आप खाए हुए नहीं होंगे, तो उन लोगों ने हमको छाछ भर के दिया, दूध भर के दिया और आपको देने के लिए आया, आप ले लीजिए और पी लीजिए, इसके बाद शाम को मैं आऊंगा आधा घंटा बाद और लोटा लेके जाऊंगा। ऐसा कहते हुए हंसते हुए उनको देखते हुए माधनपुरी को वो लेके चले जाते हैं, लोटा देके चले जाते हैं। और इधर ये दूध पीने के बाद वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी आएगा बालक, अभी बालक आएगा। वो लोटा लेके जाए उसकी इच्छा नहीं थी, उस बालक को दोबारा देखने की इच्छा थी, बहुत सुंदर बालक था। तो ऐसा करके इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो बालक आया नहीं। इसके बाद वो सो गए, और सोने के बाद फिर उनको दर्शन आता है, उसी बालक का दर्शन आता है, और बालक सपने में उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ पकड़ के एक कुंज के पास लेके जाते हैं, और कुंज के पास ले जाकर बोलते हैं कि देखो मैं यहाँ ही दबा हुआ हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, और मुझे आप यहाँ से बाहर निकालो, मैं कब से आपकी राह देख रहा था, आप ही का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे सेवा लूं, इसलिए आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत डिटेल कथा है, मैं फास्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इसके बाद वो वहाँ सबका मीटिंग करते हैं, सभी गांव वाले आते हैं, सबको इस घटना के विषय माधनपुरी बताते हैं, और गोपाल जी को उस कुंज से बाहर निकल जाता है, निकाला जाता है। इसके बाद गोपाल जी की गोवर्धन के नीचे ही बहुत सुंदर पूजा होती है, जैसे अन्नकूट फेस्टिवल मनाया गया था गोवर्धन पूजा के समय, जब भगवान कृष्ण ने मनाया था, उसी प्रकार का फेस्टिवल यहाँ भी मनाया जाता है, अन्नकूट का फेस्टिवल होता है, और उसके बाद सेवा प्रारंभ की जाती है। और उसी समय बंगाल से दो भक्त आते हैं माधवनपुरी के पास, और माधवनपुरी उनको दीक्षा देकर वो गोपाल जी की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। बहुत अच्छा सेवा भाव चलते रहता है। अचानक एक दिन माधवनपुरी को फिर स्वप्न होता है, और स्वप्न गोपाल जी बोलते हैं कि देखो मैं बहुत दिन तक जमीन के नीचे रहा, और जमीन के नीचे दबा रहा, और दबे रहने के कारण मेरे शरीर का ताप बहुत बढ़ गया, और आज तक तुम्हारे सेवा से हमारा ताप खत्म नहीं हो रहा है, और एक ही विधि है जिससे हमारे शरीर का ताप खत्म होगा, वो कौन सा है? जब मैलागिरी का जो चंदन है वो मेरे शरीर पर लेपा जाएगा, मेरे शरीर पर लगाया जाएगा, तब मुझे जाके शांति मिलेगी, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, और आप जाओ और मैलागिरी से मलयराज का पर्वत, मलयराज का चंदन लेकर आओ, मैलागिरी का चंदन लेकर आओ और मुझे लगाओ, इसके बाद मुझे शांति और सुकून मिलेगी। तो ऐसा स्वप्न सुनने के बाद सुबह सुबह माधवनपुरी तैयारी करते हैं जाने का, और उस समय चंदन इतना आसानी से नहीं मिलता था, क्योंकि राज्य कर लगते थे, राजा के अधीन चंदन की लकड़ी होती थी, और वो जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में वो सब पर्वत पाए जाते थे, वो वन पाए जाते थे। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा पे निकल गए, उधर जाने लगे, और जाते जाते और रेमुड़ा पहुंचे बीच में, और रेमुड़ा जो कि वहां गोपीनाथ जी रहते थे, और गोपीनाथ जी का दर्शन किया उन्होंने। गोपीनाथ जी का दर्शन करने के बाद वहां के सेवकों से भगवान की सेवा के विषय में पूछा, कैसे श्रृंगार होता है, कितनी बार श्रृंगार होता है, भगवान क्या क्या खाते हैं। वास्तव में उनके पूछने का प्रयोजन यह था कि जिस प्रकार भगवान का यहाँ सेवा भाव चलता है, यहाँ से मैं कुछ सीख लेता हूँ, इन लोग से कुछ पूछ लूंगा, पुराना विग्रह है, तो ऐसी ही सेवा, ऐसी ही ऐश्वर्य में सेवा, कैसे कैसे भगवान को भोग लगता है, क्या क्या खिलाया जाता है, तो ऐसी सेवा मैं जाके कहाँ चलूंगा, अपने गोपाल जी की सेवा करूंगा, ऐसी इनकी भावना थी। लेकिन पूछते पूछते फिर जो पुजारी लोग बताने लगे कि ऐसा ऐसा भोग लगता है, और एक यहाँ खीर बनता है स्पेशल खीर, वो खीर कभी ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बनता है, दिन में भगवान को एक बार खीर का भोग लगाया जाता है, और ऐसा खीर अमृत के लिए है, अमृत के समान है, जो कहीं भी नहीं बनता इस पृथ्वी पर, भगवान कहीं भी भोग नहीं लगाया जाता है। जब ऐसा माधवनपुरी सुनते हैं कि ऐसा खीर जो अमृत के समान है और कहीं भी नहीं मिलता है, तो उनके अंदर बाद में ऐसा विचार आ गया, थोड़ा टेस्ट कर लेता कैसा खीर है, ऐसी इच्छा आ गई, कितना सुमधुर है, भावना यह थी कि टेस्ट कितना मधुर होगा, तो मैं ऐसा ही खीर बनवाने का प्रयास करता अपने गोपाल जी को, ऐसी इच्छा आ गई। लेकिन जो ही इच्छा आई तो उनको अपराध भी हो गया, रे 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 अभी तो भगवान ने खाया भी नहीं, मेरे अंदर इच्छा कैसे आ गई टेस्ट करने की, और उनको आत्मग्लानी हो गई और वहां से निकल गए, मंदिर छोड़ दिया उन्होंने, और जाके दूर एक बगीचे के अंदर बैठ गए, और उधर पुजारी रात को भोग लगाते हैं, शाम को भोग लगाते हैं, और फिर जब पुजारी सब ताला वाला बंद करके जाके सो जाते हैं, तो पुजारी को सपना आता है, फिर भगवान पुजारी को डांटते हैं, तुम सेवा करता है ध्यान से करता है कि नहीं करता है? मैं तो ध्यान से करता हूँ, आपका सेवा समझ ध्यान से किया, पोछा मारा, भोग लगाया, सब कुछ किया। बोले भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो प्रसाद उसको ट्रांसफर किया, हाँ ट्रांसफर भी किया सब, मैं ट्रांसफर रूम में सब ट्रांसफर कर दिया। तो बोले तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान तो उधर ही था। बोले अच्छा, कितना पात्र था उसमें? वो पात्र का भी वर्णन है, कितना पात्र भोग लगाया जाता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं कि उसमें से एक पात्र कम है, जाके देखो। वो पात्र मैंने अपने कपड़े के पीछे छुपा के रखा है, पैर के पीछे छुपा के रखा है, और जाओ और एक भक्त है माधवेंद्रपुरी करके, वो बागीचे के अंदर बैठा है, उसको जाकर देखा रहो, जल्दी जाओ। वो बेचारा रात को सो गया था, उठा बड़हाट में गया, दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के कपड़ा हटाया, भगवान के चरणों के पास जो कपड़ा था वहां देखा तो वास्तव में खीर का पात्र छुपा हुआ था। और इसके बाद वो बाहर निकला, चिल्लाते हुए जाता है, किधर हो माधवेंद्रपुरी, आप कितने भाग्यशाली हो, कितना आपका भाग्य उदित है, कितने बड़े महान भक्त को भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है। और सब भगवान का नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ता है। और इस प्रकार माधवेंद्रपुरी मिलते हैं, माधवेंद्रपुरी को वो खीर का पात्र देते हैं, माधवेंद्रपुरी पूरा खीर खाते हैं, रो रो के खाते हैं, भगवान की करुणा पर उनको दया रोना आ जाता है, भगवान कितने बड़े भक्त वत्सल हैं कि भक्तों के लिए चोरी भी कर सकते हैं। रो रो के पूरा खीर खाते हैं, और खीर ही नहीं खाते हैं, खीर खाने के बाद जो पात्र रहता है उसको भी तोड़ के रख लेते हैं, और बोलते हैं जितने दिन तक यात्रा में रहे वो एक एक टुकड़ा डेली खा के, वो जो पात्र था ना मिट्टी का, वो पूरा पात्र खा गए, वो कि भगवान ने उसको अपने हाथ से उठाकर छुया है, उस पात्र को उठा के रखा है, ऐसी भावना दे उनको, और पूरा वो पात्र भी खा गए धीरे धीरे। हाँ, और इसके बाद वो सुबह सुबह रात को खाए थे, लेकिन उनको चिंता हो गई कि सुबह हल्ला होगा, माधवेंद्रपुरी इतना महान इतना बड़ा भक्त है कि उसके लिए भगवान ने खीर चुराया, प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान होगा, अभी ऐसा सोच के क्या किए, रात को ही भाग गए, पूरी भाग गए, रुके नहीं, वहां पूरी पहुंच गए, और पूरी में जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद जब, लेकिन दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद उनको पता चला कि जिस चीज के लिए वो भागे थे ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुका था, यहाँ ये हो गया था कि कोई माधवेंद्रपुरी नाम का है और भगवान के लिए चंदन लेने के लिए जा रहा है, और बहुत बड़ा भक्त है, भगवान गोपीनाथ ने उसके लिए खीर अपने हाथों से चुराया। कौन है गोपीनाथ, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, जितने भी जगन्नाथ जी के पंडा पुजारी सब लोग माधवेंद्रपुरी को खोज रहे थे, कौन है भाई ऐसा भक्त, और पता चल गया कि यही माधवेंद्रपुरी है जो भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं खड़ा होकर। फिर सब लोग उनको घेर के खड़े हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, सबका आपस में आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है, और फिर माधवेंद्रपुरी जी उन लोगों के पास अपना जो विचार रखते हैं कि मैं क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, उनको चंदन चाहिए। फिर सब लोग योजना बनाते हैं, मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद फिर नियुक्त किया जाता है, चलो हम चंदन आपको देंगे। फिर राजस्व अधिकारी को भी बुलाते हैं, स्टाम्प पेपर दिया जाता है कि रास्ते में कहीं कर और लगेगा, क्योंकि चंदन की लकड़ी लेके जा रहे हैं, उसके लिए पेपर दिखाएंगे तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा। तो एक ब्राह्मण और एक सेवक के साथ चंदन उनको भेज दिया जाता है। माधवेंद्रपुरी फिर पूरी से निकलते हैं चंदन लेके, पहुंचते बहुत वजन चंदन था, बहुत ज्यादा मात्रा में चंदन था, लेके जा रहे थे, पहले सवारी की सुविधा नहीं थी, और लंबा यात्रा तक तय करके गए थे, पैदल पैदल आ भी रहे थे, तो पूरा उनका शरीर धीरे धीरे, शरीर पे कोई ध्यान नहीं देता, शरीर में फफोले पड़ गए थे, लेकिन वो भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे, उनको कोई शरीर की वाह सुधी नहीं थी माधवेंद्रपुरी जी को। और पहुंचते पहुंचते फिर विश्राम करने गए कहां, गोपीनाथ मंदिर, वहां जाके रुके, और वहां जब रुके थे उसी समय रात को फिर उनको स्वप्न आता है, और स्वप्न कौन देता है, गोपाल जी। गोपाल जी बोलते हैं कि मैंने आपका चंदन स्वीकार कर लिया, जो चंदन आप लेके आ रहे हो वो चंदन गोपीनाथ को ही लगा दो, क्योंकि गोपीनाथ और मैं दोनों अभिन्न हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, यदि आप उनको चंदन के लगाओगे, चंदन का लेप लगाओगे, तो मुझे यहाँ तुष्टि मिल जाएगी, मेरा ताप चला जाएगा, तो आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं, आपने बहुत ऑलरेडी कष्ट कर लिया है, आप इतना ज्यादा कष्ट करो मत करो, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा और कष्ट आपका नहीं देख पाऊंगा, तो आप इधर ही करो, आप वहीं चंदन घिसो और गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं से स्वीकार कर लूंगा। तो ये जब स्वप्न होता है, फिर सुबह सुबह जो ब्राह्मण को लेकर आए थे और पुजारी लोग को बुलाते हैं और बताते हैं कि गोपाल ने हमको ऐसा स्वप्न दिया, ऐसा आदेश दिया, फिर सुन के जितने भी गोपीनाथ के पुजारी थे सबको आनंद की लहर आ गई, अरे वाह गोपाल जी और गोपीनाथ दोनों एक ही हैं, और भगवान ने ऐसा पहला फेस्टिवल होगा, चंदन यात्रा का पहला फेस्टिवल होगा। फिर सब लोग लग जाते हैं मेहनत करने के लिए, और इवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि समय नहीं था, जल्दी जल्दी उनका ताप दूर करना था, तो बहुत मात्रा में चंदन घिसाई करना है, तो उस समय पैसा दे दे के भी लोगों को रखा, जितने भी आओ चलो चलो चंदन घिसने में लगो, क्योंकि जल्दी से जल्दी भगवान का ताप दूर करना है, तो कुछ लोगों को पैसा दे के भी रखा, जितने ब्राह्मण थे जितने पुजारी थे खुद माधवेंद्रपुरी सब लोग चंदन की घिसाई किए। चंदन घिसाई करने के बाद फिर गोपीनाथ जी को चंदन का लेप दिया गया, और जो लेप पहला लेप दिया गया वो कौन सा दिन था, वो अक्षय तृतीया का दिन था, इसलिए चंदन यात्रा का शुरुआत होता है कल से। तो और आज से चंदन यात्रा का शुरुआत होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन चंदन का शुरुआत होता है और आज का दिन ही गंगा माँ का इस पृथ्वी पे अवतरण हुआ था। गंगा जी इस पृथ्वी धरा धाम पे आई थी। इसके पहले गंगा जी के विषय में कहते हैं कि जब बलि महाराज के यज्ञ सभा में वामन भगवान पहुंचते हैं और उनसे तीन पग भूमि मांगते हैं और तीन पग भूमि के माने पर ब्रह्मांड को नापते हैं, तो जब तीसरा पैर उठाया बलि महाराज ने तो वामन भगवान ने तो वो पैर ब्रह्मांड की सीमा को पार करते हुए ब्रह्मांड में छेद कर देता है और उनका अंगुष्ठ भाग कारण सागर है उसको टच कर जाता है। इस ब्रह्मांड की सीमा को पार करके कारण सागर जिसको गिरजा रिवर बोलते हैं, हाँ, और जो गंगा जी का पानी है वही कारण सागर का पानी है जो कि ब्रह्मांड की सीमा को पार कर गया। भगवान का पैर बढ़ते जा रहा था और बढ़ के जब इस ब्रह्मांड की सीमा को पार करता है, छेद करता है, तो उसमें से कारण सागर का पार भगवान के चरण कमलों को धोते हुए नीचे आता है। हाँ, नीचे आता है। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो गंगा जी का पानी है वो पूरा पूरा साफ नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन पानी नहीं है। उसका जो कलर है हल्का गुलाबी कलर का है, जैसे यमुना जी का पानी थोड़ा जामुन की तरह है, ऐसे भगवान जो गंगा जी का पानी है वो हल्का गुलाबी तरह का है। बोलते हैं हल्का गुलाबी तरह क्यों है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में चंदन और केसर मिक्स रहता है। भगवान के ऊपर लेप लगा रहता है चरणों में, तो चंदन और केसर युक्त मिश्रित पानी है, क्योंकि भगवान के चरणों को धोता हुआ आ रहा है। इसलिए गंगा जी का पानी थोड़ा ऐसा रहता है, हल्का गुलाबी कलर का पानी है, क्योंकि भगवान के चरणों को धोता हुआ पानी आ रहा है। हाँ, और इसके बाद 1000 वर्षों के बाद वो पानी पहले ध्रुव लोक पहुंचता है। ध्रुव लोक जो कि भगवान के बहुत ही परम भक्त हैं, बहुत ही श्रेष्ठ, जिन्होंने 5 साल की अवस्था में भगवान को प्रकट करके दिखाया और भगवान ने उनको अपने समकक्ष लोक दिया है। ऐसा लोक जिस लोक का कभी नाश नहीं होता है, भगवान के चरणों के पाद में कहा जाता है, वो जो लोक है चरणों में भगवान के पाद में है, इसलिए विष्णुपदी भी कहते हैं। जो ध्रुव लोक है उसका एक नाम विष्णुपदी भी है, क्योंकि वो जो लोक है भगवान के चरणों में स्थित है, इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। समस्त लोकों का नाश हो जाता है लेकिन ध्रुव लोक का नाश नहीं होता है। तो गंगा जी का पानी चलते हुए ध्रुव लोक तक पहुंचता है, फिर ध्रुव लोक उस पानी को लेकर माथे लगाते हैं, आचमन करते हैं और उनकी आंखों में पानी आ जाता है कि ओह, यही जल है जो भगवान के चरणों को धोता हुआ आ रहा है। वैसे भगवान जिस भगवान कारण मेरी आज ये गति हुई है कि मैं आज इतने बड़े उच्च स्थान पर बैठा हूं, वहां ध्रुव लोक की चर्चा होती है, ध्रुव महाराज की चर्चा होती है, और ध्रुव लोक देने वाला कौन है, वही भगवान जिसके चरणों का धोया हुआ जल आ रहा है। ऐसा विचार करके उनकी आंखों में पानी आ जाता है, रोने लगते हैं और उस चरणों का पान करते हैं, मस्तक पे लगाते हैं। और उसी ध्रुव लोक के इर्द गिर्द सप्त ऋषि हैं जो ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, बहुत ही महान ऋषि हैं जिन मुनियों ने डिस्कर्स निकाला है। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे वाद हैं, बहुत सारे दार्शनिक विचारक हैं, लेकिन ये 7 जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि वास्तव में बहुत सारे साधन हो सकते हैं, बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, लेकिन भगवान को तुष्ट करने का और भगवान को प्राप्त करने का जो एकमात्र साधन है वो साधन क्या है, भगवान के भक्तों के साथ रहना, भगवान के भक्तों की पूजा और भगवान की भक्ति। इसलिए ध्रुव महाराज के पास रहते हैं जहां ध्रुव भगवान गुणगान करते हैं और वो ऋषि भी भगवान गुणगान करने में लगे हुए हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान की भक्ति ही एकमात्र साधन है जो संसार के समस्त कलमश का नाश करने वाली है। हाँ, और वो महत्ता जानते हैं भगवान की, इसलिए भगवान के चरणों को टच करता हुआ जल आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने भी क्या किया, उस जल को लेके अपने सिर पे धारण किया, अपनी जटा में धारण किया उस जल को लेके। इसके बाद वो जल क्रमशः चलते हुए आगे बढ़ते हुए हजारों लाखों करोड़ों वायुवानों से जो संलप्त है स्वर्ग लोक चंद्र लोक को अप्लावित करता हुआ अनेक विमानों जहां बहुत सारे विमान खड़े हैं वहां एक लोक का वर्णन कर रहे हैं चंद्रलोक का कि जहां बहुत सारे विमान खड़े रहते हैं हजारों हजार विमान खड़े रहते हैं ऐसे लोगों को अप्लावित करती हुई वहां से बहती हुई गंगा जी कहां पहुंचती हैं ब्रह्मलोक तक पहुंचती हैं और फिर जाके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कमंडल में स्थिर हो जाती हैं। तो गंगा जी पहले आकर वहीं तक स्थिर थी, इस पृथ्वी गंगा जी का अवतरण नहीं हुआ था। तो गंगा जी कैसे गंगा जी कैसे इस धरा धाम पे आती हैं उसके विषय में थोड़ा मैं बता के फिर मैं बंद करने का प्रयास करूंगा। तो गंगा जी पहले सगर महाराज थे, सगर महाराज के लगभग 60,000 पुत्र थे, तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया और ये जो पुत्र थे बहुत ही यशस्वीशाली पुत्र थे, तो उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ का एक नियम है कि यज्ञ करने के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ा था, तो जब वो घोड़ा छोड़ा गया तो उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि ऐसा वेदों का नियम है कि यदि कोई भी निर्बाध रूप से 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है तो इंद्र का पोस्ट पक्का है। तो पोस्ट है इसलिए इंद्र को बहुत डर लगता है कि यदि 100 कर लिया तो फिर हमारा कुर्सी खतरे में है, तो इसलिए वो नियम लगाते रहता है। तो क्या किया इंद्र ने, उस घोड़े को चुरा लिया, घोड़े को चुरा के लेकर चले गए। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों का आदेश दिया, जाओ 6 दिशाओं में फैल जाओ, 4 दिशाओं में फैल जाओ, देखो घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कौन चुराया है। सभी पुत्र गए पूरे ऊंचे लोकों में, निम्न लोकों में, हर जगह खोजने लगे, घोड़ा कहीं पता नहीं चल रहा था। इसलिए आवेश में आकर उन्होंने पूरा पृथ्वी को खोदना चालू किया, कहाँ घोड़ा छुपा है। और ऐसा बोलते हैं कि वो जो पृथ्वी को खोदना चालू किया है वो 60,000 पुत्रों ने, वो खोदते खोदते उन्होंने समुद्र बना दिया है। ये जो लवण सागर है, जो समुद्र हम देखते हैं, वो सागर कैसे बन गया इतना गहरा सागर, वो सागर महाराज के पुत्रों ने, सागर महाराज के पुत्रों ने सागर को खोदा हुआ है। 60,000 पुत्र मिलकर पूरा पृथ्वी खोदने लगे घोड़ा खोजने के लिए, और इस प्रकार लवण सागर बन गया, इतना गहरा सागर बने, इतना ऐसा सुशाली पुत्र थे वो लोग। खोजते हुए जा रहे थे, खोदते हुए अचानक देखे कपिल मुनि का आश्रम है और वहां वो गाय बधी हुई थी, और बहुत समय से खोज रहे थे, उनको क्रोध आ गया। और ऐसे कोई सामान्य पुत्र तो थे नहीं है, खोद के सागर बना दिया, तो समझ सकते कितना उनका प्रताप रहा होगा। तो देखे एक ऋषि मुनि बैठा है सामने और वहां हमारा घोड़ा बना हुआ है, उनको क्रोध आया, सब लोग एकत्रित हो गए, 60,000 पुत्र, हाँ मारो मारो, ये ऋषि है, ढोंगी है, यहाँ बैठ के भजन कर रहा है और घोड़ा चुरा के बैठा है, आ सकती है राजा बनने में। ऐसा करके बहुत तेज लोग चिल्लाए, और चिल्लाने के बाद क्या हुआ, वो कपिल मुनि की तरफ आगे बढ़े। कपिल मुनि ने सिर्फ आवाज सुन के आंख खोला, और आंख खोलते हुए क्या हुआ, जितने भी 60,000 पुत्र थे सब भस्म हो गए, राख बन गए। तो वहां एक आचार्य बता रहे हैं कि कपिल मुनि तो एक बहुत बड़े महात्मा हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया है, जिन्होंने तत्व को समझाया, साक्षात भगवान है, तो उनके अंदर कैसे क्रोध आ गया कि हमारा अपमान कर रहा है, ढोंगी है ऋषि, सुन के कैसे क्रोध आ सकता है, एक ऋषि को कैसे क्रोध आता है। तिरादपि सुनी चेना तरो रिवर सही सुना, अमान इना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, तो कैसे मान की इच्छा कपिल मुनि के अंदर आ सकती है। तो वहां आचार्य समझाते हैं कि वास्तव में कपिल भगवान के अंदर, कपिल मुनि के अंदर ऐसा कुछ भी विकार नहीं आया था, और न ही उनके देखने से जले थे वो तो 60,000 भी एक साथ चिल्ला रहे हैं, हाँ मारो दौड़ो, तो स्वाभाविक है, समाधि टूटा उनका, उन्होंने आंख खोला, लेकिन जलाने के लिए, क्रोध के लिए आंख नहीं खोला उन्होंने। तो बोले ना सिर्फ आंख खोला देखने के लिए, तो बोले जल कैसे गए, कैसे जल के भस्म हो गए। तो बोले जल के इसलिए भस्म हो गए क्योंकि इतने बड़े वैष्णव, इतने बड़े भक्त, हाँ भगवान के, और इतने बड़े भगवान साक्षात भगवान ही थे ना, इतना बड़ा अपराध किया है, उनको अपशब्द बोला है, उनको मारने के लिए, जान से मारने के लिए दौड़ रहे हैं, इतना बड़ा अपराध के कारण उनके शरीर का ताप इतना बढ़ा, इतना ताप बढ़ा उनके शरीर का कि अपने ताप से भस्म हो गए। वो कपिल मुनि के श्राप से भस्म नहीं हुए, उनके शरीर के ताप से भस्म हो गए, वैष्णव अपराध के कारण शरीर सहन नहीं कर पाया ताप को, और भौतिक शरीर छा दो, वो भस्म हो गया, वो जल गया, 60,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इसके बाद एक उनके और पुत्र थे, उनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम था केशनी, तो केशनी का एक पुत्र था, सगर महाराज के कौर पुत्र 60,000 पुत्र चले गए, उनकी दूसरी पत्नी थी केशनी जिसका पुत्र था अंशुमान, जो कि पदभ्रष्ट योगी था, और उनके पुत्र थे अंशुमान। केशनी का पुत्र था असमंजस, केशनी का पुत्र असमंजस, असमंजस का पुत्र था अंशुमान। अंशुमान ने अपने भाइयों को खोजना प्रारंभ किया, और खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा, और वहां अपने भाइयों का राख देखा, 60,000 पुत्र जहां जले हैं, जहां राख पड़ा है, तो कितना भयंगम दृश्य होगा, कितना ज्यादा मात्रा में राख होगा, तो समझ गया कि हमारे सब भाई यही हैं। फिर कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं और उनकी मुक्ति की याचना करते हैं कि इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने आपका अपराध किया है और भौतिक शरीर तो खत्म हो, लेकिन आत्मा भुगत रहा है संसार में, उनका उद्धार कैसे होगा। इन कपिल महाराज बताते हैं कि इनका मुक्ति का एक ही साधन है कि जब गंगा का जल उनको टच करे, गंगा का स्पर्श हो, तो गंगा इतनी पावन है कि उनके स्पर्श से क्या होगा, इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो गंगा तो अभी अटकी है कहाँ पे, ब्रह्मा जी कमंडलों में है, तो कैसे आएंगे पृथ्वी लोक पे। तो उन्होंने तपस्या किया, बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद बुलाने में सफल नहीं हो, शरीर छूट गया। फिर उनके पुत्र हुए अंशुमान के दिलीप, दिलीप ने भी बहुत तपस्या किया अपने भाइयों को उद्धार करने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं, उनका भी शरीर छूट गया, शरीर पूरा हो गया, वो भी नहीं कर पाए। और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथी भी है क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पे लाया। भागीरथ जी बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद गंगा जी प्रसन्न हो जाती हैं, और गंगा जी आगमन करती हैं, और गंगा जी बोलती है कि मैं आने को तैयार हूं, लेकिन मेरा दो प्रश्न है। क्या प्रश्न है? एक प्रश्न यह है कि जब मैं इस जराधाम पे आऊंगी, अभी तक तो मैं पूर्ण लोक में थी, जहाँ पापी लोग नहीं रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर सब पापी लोग रहते हैं, सब अपराधी लोग रहते हैं, सब कैदी लोग रहते हैं, सब दुष्ट आत्मा रहती है यहाँ पे। तो जो ही मैं पृथ्वी लोग पे आऊंगी तो जितने भी पापी तापी हैं सब आगे हमारे अंदर स्नान करना शुरू करेंगे, तो सबका पाप से मैं बोझिल होना शुरू हो जाऊंगी, तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो सकता है सबका पाप ग्रहण करते करते। तो मैं आऊंगी तो मैं कैसे पृथ्वी पे रहूंगी, उसका रास्ता क्या है? और दूसरा कि मेरे अंदर इतना वेग है कि जब मैं वहां से उतरूंगी स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक से, तो इस पृथ्वी पे जब मैं आऊंगी तो मेरा वेग इतना बड़ा है कि यदि मैं इस पृथ्वी पे डायरेक्ट आ गई तो पृथ्वी की बात तक पृथ्वी को फाड़ के मैं रसातल में चली जाऊंगी। इस पृथ्वी लोग हमको, पृथ्वी माता हमारा भार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतना वेग है मेरा कि मैं फिर पृथ्वी को फाड़ के कहां चले जाऊंगी, रसातल के अंदर चले जाऊंगी, मेरा भार कौन रोकेगा? दो प्रश्न है। फिर भागीरथ जी बोलते हैं इसका भी मेरे पास उपाय है। उसके लिए शंकर जी से आकर प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा ऐसा है, आप वैष्णव में अथाह शंभू हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके पास अथाह शक्ति है, तो कुछ आप करिए। तो बोलते हैं ठीक है, गंगा जी को बोलो कि मैं धारण कर लूंगा, चिंता मत करो, मैं उनको अपने सर पे बैठाऊंगा पहले। हाँ, और रह गया दूसरा प्रश्न कि कैसे हमारा कल्याण होगा, सब पापी थापिया का स्नान करेंगे। तो भागीरथ जी बोलते हैं कि पापी थापी स्नान करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए शुद्ध भक्त भी स्नान करेंगे, जिन्होंने अपना भगवान को सर्वस्व मान बैठा है, ऐसे शुद्ध भक्त भी आके आपके अंदर स्नान करेंगे। जब ऐसे भक्त आपके अंदर स्नान करेंगे, पापी लोग भी आकर स्नान करेंगे, लेकिन भक्त और पापी दोनों स्नान करेंगे, जिसके कारण बैलेंस बराबर रहेगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप पाप से बोझिल हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दोनों लोग स्नान करेंगे, भक्त भी स्नान करेंगे कुंभ में जाके और अभक्त भी करेंगे, तो बैलेंस बराबर रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गंगा माता खुश हो जाती हैं और इस प्रकार भागीरथ जी की कृपा से फिर अवतरण होता है और शंकर जी उनको अपनी जटा में धारण कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी जटा से फिर एक धारा छोड़ते हैं इस पृथ्वी लोक के लिए। इस प्रकार गंगा जी का अवतरण होता है। तो जो गंगा जी पृथ्वी पे आई वो कल के दिन, आज के दिन ही उतरी थी, कल के दिन हमको क्यों याद आ रहा है, आज के दिन ही पृथ्वी माता के ऊपर गंगा जी का अवतरण हुआ था। इसके अलावा अभी समय खत्म हो गया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि और चीज क्या है। कल ही, आज के दिन ही परशुराम जी का जन्मदिन है, और आज के दिन पांडवों को सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जो अक्षय पात्र की हम कथा सुनते हैं वो आज के दिन दिया गया था। और आज के दिन कुबेर जी को कुबेर की गति दी गई थी, जिनका धन कभी खत्म नहीं, अच्छे धन है उनके पास, देते रहते हैं, धन खत्म नहीं होता, कुबेर जी का भंडार है वो, बोलते ना कुबेर जी का भंडार है। तो वो जो पोस्ट उनको दिया गया था, कुबेर जी का गद्दी, वो आज के दिन ही दिया गया था उनको, आज के दिन ही दिया गया था। और अन्नपूर्णा जी का भी प्रकट आज के दिन हुआ था इस धरा धाम पे, व्यास देव ने महाभारत की रचना आज के दिन ही किया था, और बस इतना ही कुछ प्रमाण मिला है आज के दिन का। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, और शाम को राधा राज बिहारी जी का भी चंदन यात्रा होगा। तो जैसा कि प्रभु जी बोल रहे थे कि बहुत रेयर अवसर होता है सुबह मंगला आरती में, कि साल में एक दर्शन का अवसर मिलता है, तो यदि आपके पास टाइम रहा तो अपने सगे संबंधियों को बुलाइए और भगवान के उस चंदन यात्रा का आनंद लीजिए। और पद्म पुराण में ऐसा ही बोला गया है कि आज के दिन मन वचन कर्म से कोई भी असद विचार नहीं लाना चाहिए, सब सुविचार लाना चाहिए, क्योंकि असद विचार लाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, वो भी असद विचार आते ही रहेंगे, तो यदि सद विचार लाएंगे तो सद विचार ही आते रहेंगे। तो जितना तक हो सके अपने मन को, अपने बुद्धि को भक्ति के अनुकूल, आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल रखते हुए हमको भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा राज भगवान की, रहे गौर प्रेमानंदे।